पंचाध्याय लेक्चर नंबर 6 सन्मात्रं वायतः सतः सेद्धं तस्मादनादिनिधनं स्वसहायं निर्विकल्पं च। यह ग्रंथराज श्री पंचाध्यायी है और उसके पृष्ठ संख्या 10 पर हम आ गए। 10 कल हमने 24, 25 और 26 नंबर के श्लोक पढ़े थे और यहाँ उसका भावार्थ भी पढ़ते थे। उसका एक पैराग्राफ हुआ है, फिर भी शुरू से भावार्थ पढ़ते हैं। मैंने 10 नंबर के पृष्ठ पर दूसरा पैराग्राफ समाधान करते हैं। किसका समाधान? तो शंका पूछी थी, देखो पेज नंबर 9 पर शंका पूछी थी कि वस्तु एक है, वो अनादि अनंत है और निर्विकल्पनीय अखंड है, फिर उसमें भेद की गुंजाइश ही कहाँ होती है? आप जो सत को सपक्ष कहते, सपक्ष यानी उसका पक्ष यानी दूसरा पक्ष है उसका, सपक्ष विपक्ष दोनों है वहाँ पर,
सापेक्ष।
हाँ सापेक्ष है वो, नहीं सपक्ष का अर्थ सापेक्ष नहीं होता, उसको सपक्ष कहा हमने, दूसरा पक्ष भी है विपक्ष। तो सत सपक्ष सहित है यानी दूसरे पक्ष सहित है, ऐसा लेना है, दूसरे पक्ष सहित है। क्या है दूसरा पक्ष? तो भेद है। सत कैसा कहा कि निर्विकल्प, अभेद कहा, परंतु वो सर्वथा ऐसा ही निरपेक्ष नहीं है, वो सपक्ष है, भेद सहित है।
सत सामान्य भी है, सत विशेष भी।
हाँ नहीं, ये शंका चल रही है। शंकाकार पूछता है कि आपने निर्विकल्प अखंड वस्तु सत निर्विकल्प, हमने मंगलाचरण में गया है ना कि तस्माद अनादि निधन स्वसह निर्विकल्प। यहाँ सत को निर्विकल्प कहते हैं और फिर उसके सपक्ष सहित कहते हैं। कौन सा सपक्ष है उसका? तो भेद भी है ऐसा आप कह रहे हो, तो ये कैसे हो जाते? तो आपने जो प्रतिज्ञा निर्विकल्प की थी तो आपकी प्रतिज्ञा खोटी हो जाती है, और यदि अभेद कहते हो तो सपक्षपना खोटा हो जाता है। यानी या तो आपकी प्रतिज्ञा खोटी है कहो, या वो सपक्ष नहीं है ऐसा कहो। ये दो बातें शंकाकार ने पूछी थी, उसका यहाँ जवाब दे रहे समाधान करते हैं कि डायरेक्ट हम भावार्थ कर रहे क्योंकि हमने श्लोक और उसके अर्थ को विस्तार से देखा था कि भेद दो प्रकार से होता है। एक तो ऐसा जैसे लकड़ी के दो टुकड़े, यह तो खंड रूप भेद है यानी उसके प्रदेश भिन्न हो जाते हैं। दूसरा ऐसे जैसे एक अखंड धोती में 10 गज का भेद करना, हम नापने के लिए हमने एक कोई यूनिट बनाते उसका एकक बनाते हैं और उससे हम नापते हैं तो उसके भेद हम कहते हैं कि इतने मीटर कपड़ा है। वो जमाने में गज में नापते थे ना, इसलिए तो 10 गज की धोती कहने से कहीं 10 टुकड़े नहीं हो गए, किंतु 10 गज कहे बिना वो धोती कितनी बड़ी है इसका परिज्ञान नहीं होता। सो यहाँ अखंड धोती का परिज्ञान कराने के लिए 10 गज का भेद किया है, इससे अखंड धोती की प्रतिज्ञा भंग नहीं होती। इस प्रकार भाई यहाँ सपक्ष कहने से जैसा तू खंड भेद समझ गया है वह बात नहीं है, किंतु वस्तु तो प्रतिज्ञा अनुसार निर्विकल्प यानी अखंड ही है। केवल उस अखंड का परिज्ञान कराने के लिए विधि पूर्वक खंड किया जाता है, यानी उसकी जो विधि है खंड करने की उसके अनुसार वो खंड किया जाए। जैसे हम कहेंगे चौड़ाई में प्रदेश की अपेक्षा भेद करेंगे, भावों में गुणों की अपेक्षा भेद करेंगे, अनादि अनंत काल में पर्याय एक एक समय की उसकी अपेक्षा भेद करेंगे, परंतु है तो द्रव्य पूरा अखंड समझाने के लिए, क्योंकि कितना बड़ा उसका फैलाव कितना है, तो यहाँ चौड़ाई कहेंगे नहीं, उसका विस्तार क्षेत्र कहेंगे। जैसे हमने यहाँ 10 गज कहा, वैसे वहां कितना प्रदेश है वैसा कहेंगे। जैसे आकाश त्रिकाल एक अखंड बड़ी भारी वस्तु है, किंतु जगत में एक अंगुल जगह एक हाथ जगह ऐसा भेद किया जाता है। कितनी जगह रोकी है, या हमारा घर कितना बड़ा है, तो जगह को हम नापते हैं, अंगुल में नापेंगे, हाथ में नापेंगे, मीटर में, फुट में, स्क्वायर फुट में, इस तरह से हम उसको नापेंगे। ठीक इस प्रकार हमारा तत्व तो अखंड ही है, तत्व नहीं द्रव्य, तो द्रव्य तो अखंड ही है, द्रव्य की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, भाव की अपेक्षा। हाँ, आपका प्रश्न
है। जैसे लिखा है आकार से त्रिकाल एक अखंड बड़ी भारी होती है,
भारी यानी वजन वाली नहीं,
हमने
बड़ी भारी है
नहीं,
बहुत बड़ी वस्तु है। वजन वाली भारी नहीं कह, वैसे तो होंगे हमारी साड़ी बहुत भारी है, भारी यानी वो कीमती है, वो भारी शब्द अलग अलग जगह अलग अर्थ से आती है, आता है। आपका आपका ज्ञान बहुत भारी है, भारी का अर्थ क्या है,
बहुत भारी है,
यानी उसको एम्फोसाइज करने के लिए बात, बड़ा कहकर भारी का है ना, बड़ी भारी वस्तु है, बहुत बड़ी वस्तु है। अच्छा, पूछना ऐसा कुछ प्रश्न है तो, यानी पूछना मैं कह रही हूँ,
भारी क्या लागत है, पूछा हल्को कहना।
हाँ देखो, ठीक इस प्रकार हमारा तत्व तो अखंडित ही है, किंतु तुझे बोध कराने के लिए भेद करते हैं, ऐसे आचार्य स्वयं कह रहे हैं शंकाकार। यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ तक तो हमारा कल हुआ था परसों। अब अखंड वस्तु में वह भेद दो प्रकार से होता है, जैसे धोती में एक चौड़ाई का भेद, जैसे 45 इंच जिसको हम पन्ना कहते हैं, एक लंबाई का भेद जैसे 10 गज, चौड़ाई तो उतनी की उतनी हम कहेंगे, 45 इंच की चौड़ाई वाला जो कपड़ा है, आप एक मीटर ले लो काट कर 10 मीटर ले लो, या कितना भी पूरा ताका ले लो, तो उसकी तो चौड़ाई तो उतनी की उतनी रहेगी। तब धोती का परिज्ञान होता है, तो हमें उसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों ख्याल में आती है, तो कितना बड़ा कपड़ा है हमारे ख्याल में आ जाता है। इसी प्रकार वस्तु में एक चौड़ाई की अपेक्षा भेद है, यह भेद प्रदेशों से किया जाता है। जैसे एक प्रदेश, सुशीला बहन, एक प्रदेश ही कोई वस्तु है, परमा, और कोई है काला, जिसको हम काल द्रव्य भी कहते हैं। तो एक प्रदेश, असंख्यात प्रदेश, मिली भाई बोलो, असंख्यात प्रदेश कौन कौन से वस्तुएं हैं,
जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म,
ये असंख्यात प्रदेश है। वो तो बहु प्रदेश में अनंत वगैरह, यानी वो परमाणु की संख्या की अपेक्षा ले, जगह रोकने की अपेक्षा नहीं ले। और अनंत प्रदेश, अनंत प्रदेश कौन है, आकाश। अब दूसरा भेद वस्तु में लंबाई की अपेक्षा है, तो चौड़ाई में कोई एक प्रदेशी है, कोई असंख्यात प्रदेशी है, कोई अनंत प्रदेशी है, लंबाई में कौन सा बड़ा है, अश्विन में बोलेगा, कौन सा द्रव्य बड़ा है लंबाई में,
आकाश।
आप क्या कहते हैं,
सभी द्रव्य
से लंबाई कैसे नापेंगे?
काल से
अनादि, ये कब से ऐसा दिखा रहे हैं?
अरे
देखो देखो, दूसरा वेद वस्तु में लंबाई की अपेक्षा है, वह परिणमन की अपेक्षा किया जाता है। और हमने ये भी देखा कि प्रत्येक द्रव्य में उतने परिणमन यानी उतने पर्याय होती है जितने तीन काल के समय, यानी अनादि द्रव्य कितना लंबा यानी कितना फैला हुआ है, जिसको हम कहेंगे ऊर्ध्व काल की अपेक्षा जब कहना है तो ऊर्ध्व प्रत्यय कहते हैं, यानी वो इस तरह से वर्टिकल डायमेंशन उसके लेना, और ये हॉरिजॉन्टल लेने तिर्यक प्रचय और ऊर्ध्व प्रचय। यहाँ वे शब्द नहीं है, यहाँ तो कह रहे कि द्रव्य की चौड़ाई यानी द्रव्य कितना प्रदेशी है, उसका क्षेत्र कितना है, उसको कहेंगे उसकी चौड़ाई, और उसकी लंबाई यानी द्रव्य कितना फैला है, कब कहाँ से कब तक है, तो अनादि अनंत है तो उसकी लंबाई हो गई। यहाँ उदाहरण दिया था दृष्टांत धोती का, धोती की चौड़ाई जिसको हम पन्ना कहते कपड़े का, वो 45 इंच है, और लंबाई कितनी है तो 10 गज यानी 10 मीटर है। ऐसे द्रव्य को हमको नापना है तो उसकी चौड़ाई ने उसके प्रदेश कितने हैं, तो कोई एक प्रदेशी, कोई असंख्यात प्रदेशी, कोई अनंत प्रदेशी, वो क्षेत्र है उसका विस्तार फैला, परंतु ऐसा कितना फैला हुआ है तो अनादि अनंत, ये उसकी लंबाई है। तो हमने पूछा था कौन सा द्रव्य ज्यादा लंबा है, सभी समान है क्योंकि अनादि अनंत है सभी, है ना। दोनों प्रकार का भेद वास्तविक रूप से समझने पर ही, वास्तविक रूप से नहीं जैसा है वैसा समझने पर ही, यानी रियलिटी द्रव्य कैसा है, उसकी चौड़ाई कितनी है और उसकी लंबाई कितनी है, ऐसा यदि हम समझे तो ही निर्विकल्प यानी अखंडित अनादि अनंत एक वस्तु ख्याल में आ सकती है। जब हम कहेंगे हम एक है, एक कहने से उसकी चौड़ाई भी और उसकी लंबाई भी पूरी ख्याल में लेनी चाहिए, इतने प्रदेशी है और अनादि अनंत है। सो पहले चौड़ाई की अपेक्षा भेद का निरूपण श्लोक 25 से 37 तक करेंगे। 25 से तो शुरू हो गया अपना, फिर भी यहाँ वो बता रहे कहाँ से कौन सा वर्णन है, और फिर परिणमन यानी लंबाई रूप भेद की अपेक्षा निरूपण 38 से 63 तक करेंगे। सो भाई, यह भेद का निरूपण होते हुए भी तू अभेद वस्तु को पकड़, ये बहुत महत्व की बात है। हम भेदों को समझने समझाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि भेदों से नजर ही नहीं हटाते और अभेद वस्तु को पकड़ते हैं। वस्तु तो उसमें इतने गुण है, इतने प्रदेश है, उसमें उसी में हम वो समझने के लिए था, पर समझकर अभेद अखंड को पकड़ना। अभेद अखंड कैसा है तो असंख्यात प्रदेश है, अनादि अनंत है, परंतु तो वो द्रव्य रूप से तो एक है। परंतु वो विकल्प हुए ना, कहने की क्या जरूरत है। अभी आम खाते समय कहते कि ये बहुत मीठा है, ये पीला है, ये ऐसे, अरे वो खाते हैं उसका स्वाद लेते हैं, मुंह में डालते तो दूसरा कुछ दुनिया का याद नहीं आता है, कितना विकल्प करते हैं। यहाँ तो ज्ञान से अपने ज्ञान में तत्व को पकड़ना है, वो तो उसका लक्षण बताए, और पकड़ना पूरी वस्तु को है यहाँ। और देखो ये तो ये अभी कलशामृत में भी यही बात आ रही, वस्तु तो सर्वज्ञ वितरागी स्वरूप है, उसका स्वभाव है, तो उसमें परिणमन करने की योग्यता है कि हमारे विकल्प करने की उसका परिणमन होगा, तो पर्याय में वो स्वभाव प्रकट करने की सामर्थ्य भी वस्तु में है, पर हम उसको चांस कहाँ दे रहे हैं। वो भले वहाँ पर्याय में प्रकट हो रही है पर हम बार बार दूसरी ओर रुचि पड़ी है और अन्य अन्य चीजों को ही जानने में उलझे हैं, तो वो यानी ज्ञान की पर्याय में झलकते हुए भी हम उसका उसकी ओर नहीं देखते, उसके लिए कुछ नहीं करना है, वो तो हो ही रही है, परंतु अन्य वस्तुओं के यानी जो अन्य ज्ञेयों के तरफ हमारी रुचि इतनी है कि जो मूल हमारा जो स्वभाव भी उसमें उसी पर्याय में प्रकट हो रहा है, ये आबाल गोपाल सभी उसको जान रहे हैं, कहते ना आचार्य कह रहे, हम आप नहीं कह रहे, तो इतनी छोटी सी भूल है, कितनी बड़ी भूल नहीं है और उसके लिए यानी जानने के लिए भी कुछ और कोशिश करेंगे तो जानने में ऐसा भी नहीं, वो तो झलक ही रहा है, बस हमारी रुचि अन्यत्र पड़ी है, वो तो दिखते हुए भी नहीं दिखते, जब आईने के सामने जाते हो सुबह उठते ही क्या देखते बेटा, बाल बाल बराबर देखते, उस समय आईना दिख रहा है कि नहीं, आईना है कि नहीं, आईने में तो देख रहे हो, आईना दिख रहा है पर उसका लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य
नहीं
दिख रहा, इन्हें झलक रहा है यहाँ अपना, हम प्रतिबिंब नहीं कहेंगे, थोड़ा कहेंगे, परंतु यह मैं हूं तो हम उसमें इतने लीन होकर मगन होकर जानते रहते हैं, और फिर भी दाग दिखा तो क्या करते हैं, आईना पूछते हैं, यानी उसमें तो हम इतने वो सिखाना नहीं पड़ता है हमको,
हाँ
पूरा झलक रहा है हर समय, तो देखो दोनों प्रकार, यहाँ तो भेदों को समझने की बात पहले है, भेदों को समझकर अभेद अखंड को पकड़ना है, पकड़ने में वो तो है ही वस्तु अखंड, वो कैसी है तो कैसी है, तो हमने उसको उसका गुणगान किया, गुणगान किया ना उसके गुणों को भावों को समझा हमने, सो ये तो हमने पढ़ा था पहले, कहां से कहां तक वो भेद का निरूपण करेंगे, फिर परिणमन रूप भेद की अपेक्षा करेंगे, सो भाई ये वाक्य में फिर पढ़ रही हूँ नीचे के पैराग्राफ में सेकंड लाइन, यह भेद का निरूपण, निरूपण यानी कथन, होते हुए भी यानी ये जरूर भेदों का कथन करेंगे, क्योंकि उसके बिना वस्तु ख्याल, क्योंकि ऊपर बताए वास्तविक रूप से समझने पर ही निर्विकल्प यानी अखंडित अनादि अनंत एक वस्तु ख्याल में आएगी, वो हमेशा वो भारत का उदाहरण देते ना, भारत भारत है तो अखंड, वो अखंड एक भारत समझने के लिए उसके सभी जो भेद है, स्टेट्स है, वो जिले है, जो कोई प्रांत है, उन सबको समझना है, तो कहां से कहां तक फैला है, कितनी भाषाएं हैं, कैसे लोग हैं, वो सब समझेंगे, फिर भी वो एक है, फिर भेदों का लक्ष्य नहीं करना है, समझने तक ही भेदों का लक्ष्य करना था, फिर अभेद को अखंड को पकड़ो, तो कहते यह भेद का निरूपण होते हुए भी तो अभेद वस्तु को पकड़, भेद भेद में अटकाने के लिए नहीं किया गया है, किंतु भेद तो अभेद में लाने के लिए किया गया है, बहुत महत्व का है ये वाक्य, भेद में राग बंध व्यवहार संसार है, क्योंकि भेद कर रहे हैं ये विकल्पात्मक है, भेदों का लक्ष्य है अभेद अखंड वस्तु, तभी ख्याल में नहीं आ रही है, यानी वो वस्तु कैसी है ये ख्याल में आ रहा है, परंतु पूरी अखंड वस्तु को एट ए टाइम हमको पकड़ना था, पकड़ना है ना ज्ञान में जानना है, पकड़ने ने कुछ हाँ भेद को जानकर फिर भेदों का लक्ष्य छोड़ना है, उसको गौण करके अखंड वस्तु को ख्याल में लेना, तो भेद में क्या है, राग है, विकल्प है, राग है, भेद का नाम भी विकल्प है, और वो विकल्प का लक्ष्य करने से भी विकल्प यानी राग उठते हैं, वही बंध है, राग है तो बंध है, वही उसी को व्यवहार कहा, यही संसार है, और अभेद में बीत रागता मोक्ष मार्ग निश्चय है, वो मोक्ष मार्ग के बाद एक कोमा लगा दो, अभेद वस्तु के अनुभव कराने के लिए ही भेद का निरूपण ज्ञानियों ने किया है, भेद में अटकने के लिए नहीं किया। ये पूरा सार इसमें भर दिया है। यह भेद केवल व्यवहार से है, निश्चय से तो वस्तु अभेद है। व्यवहार से नहीं, समझने के लिए भेद कर करके समझाई है। वस्तु तो अखंड है। यद्यपि प्रमाण दृष्टि से देखो, ज्ञान कैसा है, सम्यक ज्ञान प्रमाण होता है, वो अभेद को भी जानता है, भेद को भी जानता है, यानी प्रमाण दृष्टि से वस्तु भेदा भेदात्मक है। तो यद्यपि प्रमाण दृष्टि से वस्तु भेदा भेदात्मक है, वो भेदा भेदात्मक एक शब्द है, यानी भेद और अभेदात्मक, तो भी मोक्ष मार्ग का विषय अभेद अनुभव ही है। यानी वस्तु को किस रूप से सम्यक दर्शन का विषय जिसको कहेंगे कि मैं अखंड एक निर्विकल्प हूं, ये सब कहना जल्प रूप से नहीं है। वो अखंड रूप वस्तु को ख्याल में लेना है, यही मैं हूं ऐसी जो मान्यता हो जाती है, प्रतीति हो जाती है, क्योंकि हम मैं जीव द्रव्य हूं इसमें सब आ गया है, परंतु मैं जीव द्रव्य हूं तो उसकी विशेषताएं क्या है, वो कितना प्रदेश है, कितना लंबा है, उसकी परिणाम व्यवस्था क्या है, वो दूसरे का कुछ करता है कि नहीं करता है, ये सब हमने भेद कर करके बहुत विस्तार से जाना। फिर लास्ट में कहा ना, मैं एक जीव हूं, अखंड अभेद हूं। सम्यक्त्व का विषय अभेद ही है। देखो ज्ञान तो सबको जानता है, सौ को भी पर को भी, भेद को भी अभेद को भी। सम्यक दर्शन तो मात्र ये स्व अभेद को पकड़ता है। जिसको शुद्ध न्याय कहते हैं, शुद्ध न्याय का विषय क्या है, अभेद अखंड, और उसको भेद करना, उसको जानना, ये तो अशुद्ध न्याय का विषय है। तो समय सार में सर्वत्र शुद्ध न्याय को भूतार्थ कहा और उसके अगेंस्ट व्यवहार कह दिया, व्यवहार करने नहीं उसके भेद करते। वहां कहीं पर निश्चय व्यवहार की बात नहीं, शुद्ध न्याय की और व्यवहार न्याय की बात है। तो सम्यक्त्व का विषय अभेद ही है, ही लगाया। कथन भी अभेद की मुख्यता से चल रहा है। देखो ये सम्यक्त्व कहने दृष्टि का जिसको विषय कहते हैं, ऐसा कहने पर आपने अधूरी वस्तु जानी, ऐसा है नहीं है, क्योंकि ज्ञान ने तो भेद अभेद सबको जान लिया है। प्रमाण से जाना है ज्ञान ने, और फिर उसका जो शुद्ध नय का जो अभेद अखंड है उसमें हमने ये प्रतीति कर ली कि यही मैं हूं, उसी को जानते रहे हम। तो जानने में ज्ञान के पर्याय में भेद अभेद सभी है, पर अभी हमने मुख्य किसको किया, वो अभेद अखंड निर्विकल्प वस्तु। इस पर भी शिष्य को संतोष नहीं हुआ। वह पुनः कहता है, जब यह भेद काल्पनिक ही है तो इसकी आवश्यकता ही क्या है। जैसे सुबह हमारे अश्विन भाई का समाधान जब तक नहीं होता तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छी बात है, तो विषय क्लियर हो जाता है ना। अब शंकाकार शंका पूछता है 27 नंबर के श्लोक में,
जो भेद का जो ज्ञान करता है उसका वहाँ पे राग उत्पन्न होता ही नहीं।
हाँ, देखो आपका प्रश्न
नहीं बनता है, क्योंकि इसका जो भेद का जो ज्ञान होता है, क्योंकि कार्य करने जो स्थिरता नहीं है, अभेद का लक्ष्य वो कंटिन्यूसली नहीं कर सकता है, तो उतना उसको राग उत्पन्न होता ही रहता है,
होता ही रहता नहीं। भेद का ज्ञान अलग बात है और वो भेदों के विकल्प में अटकना अलग बात है। ज्ञान तो रहेगा ना, भेद का ज्ञान कहाँ जाएगा उसका,
वो तो हमेशा होता रहेगा।
हाँ, तो ये तो ज्ञान की ये शुद्ध ज्ञान है, भेद अभेद क्योंकि प्रमाण है ना, ज्ञान प्रमाण है, तो वो प्रमाण सबको जानेगा। अरे भेद की बात क्या, वो पर को भी जानेगा, केवल ज्ञानी जानते कि नहीं जानते। राग सहित जानना बात अलग, विकल्प में अटकना बात अलग।
ज्ञान कैसे बताएगा, भेद का ज्ञान होता है वहाँ पे राग की उत्पत्ति होती है।
देखो ये क्या कहा, ये भेद का निरूपण ज्ञानियों ने किया है। जानकर किया कि बिना जान के किया,
जान के
किया। जानने के लिए किया कि अब कि किसके लिए किया, जानने के लिए किया, पर कहते उसमें अटकने के लिए नहीं किया। अटकने में उसी उसके विकल्पों में उलझा रहता है, अखंड वस्तु को जीव पकड़ता नहीं। सम्यक वही नहीं हुआ तो भेदों को जानने से फायदा क्या हुआ उसको, ख्याल में आती है बात। इन्हें भेदों को जानकर अभेद को अखंड को पकड़ना है, पकड़ना है नहीं ज्ञान में लेना है, उसमें स्थिर हो जाना है। शंका एतेन विना चैकं द्रव्यं सम्यक् प्रपश्यतश्चापि को दोषो यद्भीते प्रियं व्यवस्थैव साधुरस्त्वीति चे। ये साधुरस साधु अस्तु इति चेत है, वो जो वेलांटी कहते हैं ना हम मराठी में इकार, वो पूरा वो स्त्व पूरे स्त्व के ऊपर चाहिए। साधु रस्त्विति चेत स तब सबको मिलकर वो उसका ई कराना। हाँ वो तो क्या है डीटीपी करने में या प्रिंटिंग में ये मिस्टेक ऐसी होती है, वो इतनी लंबी नहीं कि उसको स्पेशल बनाना पड़ता है। ये बहुत एक एक बनाने में बहुत तकलीफ होती है। यही ओभी शंकाकार पूछ रहा है आपके श्लोक नंबर 8 में की गई प्रतिज्ञा के अनुसार इस प्रदेश रूप अंश कल्पना के बिना केवल एक अखंड निर्विकल्प द्रव्य को ही भले प्रकार देखने वाले के क्या दोष है कि जिस दोष के भय से यह देशांश की व्यवस्था ही ठीक है। यदि तुम्हारी ऐसी आशंका है तो ऐसा, यदि आप ऐसा कहते हो जैसे डॉक्टर मंजरी साहब कहते ना, यदि तुम ऐसा कहोगे तो वैसे ही शंकाकार ये प्रश्न पूछ सकता है तो स्वयं ही शंका उठाकर उसी का समाधान करें। 8 नंबर के श्लोक में हमने निर्विकल्प अभेद अखंड वस्तु को बताया, तो कहते अभी ये चौड़ाई वगैरह क्यों बता रहे इतने प्रदेश ये वगैरह, तो ये भेद काल्पनिक तो कह रहे हैं, तो भेद करने की जरूरत क्या, अखंड को ही जानो ना, भेद करो ही मत ये कह रहे। पहले भेद को जानो फिर उसको गौण करो फिर अभेद को पकड़ो, तो अभेद को ही जानो ना, भेद में जाते ही क्यों, ये कहने की उसका प्रयोजन यानी उसका अभिप्राय। समाधान ये 3 श्लोकों द्वारा समाधान होगा, हम एक एक को पढ़ेंगे, 28 नंबर को पहले पढ़ेंगे। देशाभावे नियमात् सत्वं द्रव्यस्य न प्रतीयेत, देशांशाभावेऽपि च सर्वं स्यादेक देशमात्रं वा। यदि देश ही न माना जाए यानी प्रदेश ही न माने जावे, यानी कोई द्रव्य का कोई विस्तार है ऐसा मानेंगे नहीं, तो नियम से द्रव्य की सत्ता का ही निश्चय नहीं हो सकेगा। यानी कोई वस्तु है तो उसके कोई डायमेंशंस है ना, ये हमने अभी ये पेंसिल है तो इतनी लंबी है, ये पेन है ये इतनी चौड़ी है, कुछ ना कुछ उसका नाप है अपना। यदि कुछ है ही नहीं है तो द्रव्य की सत्ता ही निश्चित नहीं हो सकेगी। क्या लिखा फिर पढ़ेंगे, यदि देश ही न माना जाए, वस्तु का कोई फैलाव है उसका क्षेत्र ऐसा ही नहीं मानेंगे, तो नियम से द्रव्य की सत्ता का ही निश्चय नहीं हो सकेगा, उसका अस्तित्व ही नहीं सिद्ध कर सकेंगे। तो अरूपी द्रव्यों को चौड़ाई लंबाई होगी कि नहीं होगी, अभी हमने देखा ना सत को एक चौड़ाई भी है और लंबाई भी है। लंबाई कितनी देखी आप थे कि लेट आए, अनादि अनंत, और चौड़ाई उसके जितने प्रदेश होते हैं, एक प्रदेशीय असंख्यात प्रदेशीय आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशीय, यानी द्रव्य रूपी हो या अरूपी उसको अपना अपनी चौड़ाई अपने अपने प्रदेश अपने अपने देश, इसको देश यानी उसका विस्तार क्षेत्र है। क्षेत्र आ गया, क्षेत्र और काल, यहाँ तो क्षेत्र की बात पहले समझा रहे, पहले बताया ना उन्होंने 25 से 37 तक भेद का यानी चौड़ाई की अपेक्षा भेद का निरूपण करेंगे, यानी यहाँ केवल अभी क्षेत्रों की चर्चा चलेगी और काल की अपेक्षा जो है वो बाद में करेंगे। तो कहे यदि देश ही न माना जाए, यानी उसका फैलाव नहीं मानेंगे, तो एक तो द्रव्य की सत्ता ही नहीं होगी, क्योंकि जो द्रव्य है उसका अपना कुछ ना कुछ विस्तार तो होगा ही होगा। और देशांशों को न मानने पर, देशांश है नहीं वो कितने प्रदेशी है, यदि उसको नहीं नापेंगे तो सभी सेम हो जाएंगे ना, सब द्रव्य मात्र एक एक प्रदेशी होंगे। अंश है ना, उसके अंश की कल्पना अगर नहीं करेंगे, उसका कोई यूनिट नहीं बनाएंगे, तो मेन हमारा घर छोटा है 500 स्क्वायर फुट का और आपका 2000 स्क्वायर फुट का, ऐसा कोई हम उसमें भेद ही नहीं करेंगे तो सब एक समान हो जाएगी ना। भावार्थ, देश के मानने से द्रव्य है ऐसा परिज्ञान होता, उसके अस्तित्व सिद्ध हो जाता। क्योंकि देखो जो भारत है, अफ्रीका है, उसका कोई ना कोई अपना विस्तार है कि नहीं है, हम कहें ना वो कितना है लंबा चौड़ा, माइल में नापेंगे और जो कुछ है आपको किलोमीटर में नापेंगे, उसका कोई
असंख्यात प्रदेश में वैसे ही असंख्यात, जैसे
जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है और आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, उसको अपना विस्तार तो है ना, उसका अपना जो कोई सब्सटेंस है जीव का, वो कुछ ऐसा पोला तो नहीं है, है ना, घन रूप है ना वस्तु कोई भी है, भले वो आरूपी है कि रूपी है वो बात यहाँ नहीं है। देखो भावार्थ, देश के मानने से द्रव्य है ऐसा परिज्ञान होता है, और देशांशों के मानने से, यानी वो कितने प्रदेशी है ऐसा मापेंगे, द्रव्य की इयत्ता यानी परिमाण का ज्ञान होता है, यानी वो कितना बड़ा है, उसका वॉल्यूम कितना है, इसका ज्ञान होता है। जितने जिस द्रव्य के अंश होते हैं वह द्रव्य उतना ही बड़ा समझा जाता है। इसलिए हमने आकाश में तो प्रदेशों की अपेक्षा अंश बताया ना, प्रदेश सबसे छोटा प्रदेश जो है जिसका दूसरा विभाग नहीं होता है, ऐसे अनंत अंश है वहां पर, अनंत प्रदेशी। यदि देश के अंशों की कल्पना न की जाए, अंशों की कल्पना विस्तार क्रम कहेंगे, प्रदेश की अपेक्षा कितना विस्तार, कितना फैला है, कितना चौड़ा है द्रव्य, ऐसा अगर कल्पना न की जाए तो सभी द्रव्य समान समझे जावेंगे, वो कोई छोटा बड़ा होगा ही नहीं ना, क्योंकि उसमें अंश ही नहीं कोई, बस द्रव्य का अपना विस्तार है, कितना है तो हमने कुछ अंशों में उसका यूनिट ही बनाई नहीं। अंश विभाग न होने से सभी का एक ही अंश ने एक प्रदेश समझा जाए। 29 नंबर, तत्रा सत्वे वस्तुनि न श्रेयस्तस्य साधका भावात् एवं चैकाशत्वे महतो व्योम्नो प्रतीयमानत्वात्। व्योम्न है ने क्या, हाँ, देखो वस्तु को असत यानी अभाव रूप स्वीकार करना ठीक नहीं है। ऊपर में देखा ना हमने, अगर देश को ही नहीं मानेंगे तो वस्तु का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होगा, अभाव मानना पड़ेगा। तो कहते हैं वस्तु को अभाव रूप तो स्वीकार नहीं करना ठीक तो है ही नहीं, क्योंकि वस्तु है सत उसका लक्षण है, क्योंकि वस्तु असत स्वरूप सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण नहीं है। क्योंकि जो है उसको बताएंगे तो नहीं, अभी तो नहीं है, क्या क्या कहेंगे, आकाश का फूल नहीं है, गधे के सिंह नहीं है, क्या क्या नहीं है कहेंगे। इसी प्रकार वस्तु में अंश भेद न मानने से, अर्थात एक प्रदेशी वस्तु मानने से आकाश की महानता का ज्ञान नहीं हो सकेगा, वह एक प्रदेश मात्र हो जाएगा, क्योंकि सभी एक प्रदेश हो गए ना, उसके अंशों को नहीं मानेंगे तो सब एक जैसे हो जाएगा, एक प्रदेश हो जाएगी, कोई उसमें छोटा बड़ा होगा ही नहीं। भावार्थ, वस्तु में जब अंशों की कल्पना की जाती है तब तो यह बात सिद्ध हो जाती है। देखो हमने ये कल्पना नहीं की कि वो इतना बड़ा है या असंख्यक प्रदेशी, हमने ये कल्पना नहीं की वो अनंत प्रदेशी, हमने प्रदेश की कल्पना की कि उसका एक यूनिट बनाया कि ये परमाणु जितना क्षेत्र रोकता है उतना एक प्रदेश है, ये हमने यूनिट कर दिया उसको। हमारा घर इतना स्क्वायर फीट है तो हमने ये स्क्वायर फीट वाली कल्पना करके फिर हमने घर को नापा है, उसका क्षेत्रफल निकाला है। ऐसे ही वस्तु में जब अंशों की कल्पना की जाती है यानी कितने प्रदेशी है ये हम नापेंगे उसको, तब तो यह बात सिद्ध हो जाती है कि जिस वस्तु के जितने अधिक अंश है वह उतनी ही बड़ी है, जिसके जितने कम अंश है वह उतनी ही छोटी है। आकाश के सब वस्तुओं से अधिक अंश है इसलिए वह सबसे महान ठहरता है। किस अपेक्षा से?
प्रदेशों
के विस्तार की अपेक्षा से।
बड़ा
भारी, बड़ा भारी। यदि देशांश की कल्पना को उठा दिया जाए तो छोटे बड़े का भेद भी उड़ जाएगा। हाँ, वहां की अभी अलवर वाले हैं लिखने वाले। अभी 30 नंबर को पढ़ेंगे। किं चैतदंश कल्पनम अपि फलवत्स्याद्यतोऽनुमीयेत कायत्वमाकायत्वम् द्रव्याणामिह ममत्वम् अममत्वम् कायत्वम् अकायत्वम्। देखो, तथा अंश कल्पना से यह भी फल होता है, उससे द्रव्यों में कायत्व और अकायत्व का अनुमान कर लिया जाता है। कायत्व यानी बहुप्रदेशी पना और अकायत्व यानी बहुप्रदेशी नहीं, एक प्रदेशी है। तो ऐसा एक प्रदेशी कौन सा द्रव्य है? पुद्गल। परंतु पुद्गल में स्कंद होने की योग्यता है और वो बहुप्रदेशी भी बन जाता है, इसलिए उसको कायत्व में स्वीकार किया गया। आपने नाम सुने होंगे पंचासी काय, नाम सुना है? किसको छोड़ा पांच में? काल के बिना, यानी जीवाशिकाय, पुद्गलाशिकाय, धर्मासिकाय, अधर्मासिकाय और आकाशस्थिकाय। काल तो एक प्रदेशी है, उसका दूसरे काल द्रव्य के साथ कोई बंध नहीं होता, उसका संयोग से कोई अन्य चीज बन गई, स्कंद हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। क्या कहते हैं? देखो, अंश कल्पना से यह भी फल होता है कि उससे द्रव्यों में कायत्व और अकायत्व का अनुमान कर लिया जाता है। देखो, ये सब अंशों के हम अनुमान लगाते हैं ना, इमेजिन भी कर सकते हैं कि आकाश बहुत बड़ा द्रव्य है, अनंत प्रदेश है, जीव असंख्यात प्रदेश, एक एक जीव के प्रदेश कितने हैं संख्या में तो असंख्यात, कितने असंख्यात है लोक में, जितने प्रदेश है उतने। वैसे अभी एक दूसरे में वो तो अवगाहन होकर रह गए है, जिसको संकोच कहते हैं, पूरे फैल तो पूरे लोक में एक जीव के प्रदेश फैलेंगे, और ऐसे जीव कितने? अनंत, और रह रहे एक लोकाकाश में, फिर भी उसका अपना जो, हाँ वो असंख्यात प्रदेश है, परंतु जीव के ने आत्मा के अपने असंख्यात प्रदेश वो समेट कर थोड़े क्षेत्र में रह सकते, असंख्यात प्रदेशों की संख्या कभी कम नहीं होगी। अभी हमने देखा ना अखंड, उसके प्रदेशों की संख्या हीनाधिक हो ही नहीं सकती, वो कितनी जगह रोकता है उसमें हीनाधिक होगा, जिसको अवगाहना कहते हैं, कितना स्पेस जैसे है ना, ये तो आदमी बहुत लंबा चौड़ा है, ज्यादा जगह रोकेगा, और छोटा पतला कोई है या बच्चा है तो कम जगह रोकेगा। दोनों के आत्म प्रदेशों की अपेक्षा देखेंगे तो असंख्यात प्रदेश उतने ही है, ऐसा भी नहीं उनके प्रदेश छोटे इनके प्रदेश बड़े, ऐसा भी नहीं है। प्रदेश तो हमने यूनिट बना लिया, वो छोटा बड़ा नहीं होता, प्रदेश छोटा बड़ा नहीं होता है, ये प्रदेशों का इन्हें वो इकट्ठे रहेगी ना उगाने एक दूसरे को देकर, एक ही आकाश के प्रदेश में जीव के अपने अनेक प्रदेश इकट्ठा एक प्रदेश में रोके जाएंगे। तो जैसे चींटी के आत्म प्रदेश है इतने से क्षेत्र में रहे, और हमारे उतने ही प्रदेश तो उतने ही आत्मा के, अभी 5 फुट 6 फुट में रहे। और बड़ा कोई महाकाय होगा ना, महामत्स्य 12.5 करोड़ घन योजन वाला, तो प्रदेश कितने फैलेंगे, और केवली समुदाय में पूरे लोक में फैलेंगे। देखो हम क्या पढ़ रहे थे, फिर पढ़ेंगे यहाँ भावार्थ पढ़ रहे थे ना, नहीं ऊपर का पढ़ रहे थे। कायत्व और अकायत्व का अनुमान कर लिया जाता है, जैसे आत्मा और काल, कायत्व के लिए आत्मा का अनेक प्रदेश है और अकायत्व के लिए काल द्रव्य को लिया, इसी प्रकार छोटे और बड़े का भी अनुमान कर लिया जाता है, जैसे आत्मा और आकाश, आत्मा को दोनों जगह फिक्स रखा, काल के सामने तो कायत्व की अपेक्षा आत्मा को लिया, नहीं जीव को, अकायत्व में काल द्रव्य को लिया, और छोटे बड़े में आत्मा तो असंख्य प्रदेशी है और आकाश तो अनंत प्रदेशी है, तो वहां आत्मा छोटा हुआ और ये आकाश द्रव्य बड़ा हुआ। तो जीव छोटा है कि बड़ा है? है तो उतना, हाँ असंख्य प्रदेश है, काल द्रव्य के सामने देखोगे तो उसको बड़ा कहेंगे, क्योंकि ये छोटा बड़ा तो पर की अपेक्षा से होता है, जो जितना है उतना ही है ना, उसमें छोटा बड़ा कहाँ है। हमने मिली भाई को पूछा, आप भाइयों में छोटे हो क्या बड़े हो?
बड़े भाई के
छोटे हो, छोटे और हम लोग को पूछेंगे तो क्या कहेंगे, अरे मैं अकेला ही हूँ। जिन द्रव्यों में बहुत प्रदेश होते हैं वे अस्थिकाय समझे जाते हैं, और जिनमें केवल एक ही प्रदेश होता है वह अस्थिकाय नहीं समझा जाता। देखो उसकी उसकी अस्थि तो है, क्योंकि वो भी सत द्रव्य लक्षण वाला द्रव्य है, कायत्व नहीं, बहुप्रदेशीपना नहीं। बहुप्रदेश और एक प्रदेश का ज्ञान तभी हो सकता है जबकि उस द्रव्य के प्रदेशों की जुदी जुदी कल्पना की जाए, यानी प्रदेश का नाप लेकर हम उसको नापेंगे तो ही ये बात घटित हो सकती है। बिना जुदी जुदी कल्पना किए प्रदेशों की न्यूनाधिकता, न्यून यानी कम, अधिक यानी अधिक, हीनाधिकता कहो न्यूनाधिकता कहो, का बोध नहीं हो सकता, यानी उसका ज्ञान नहीं हो सकता। और बिना न्यूनाधिकता का बोध हुए द्रव्यों में कौन द्रव्य छोटा है और कौन बड़ा है यह परिज्ञान भी नहीं हो सकता, इसलिए ये अंशों की कल्पना सफल है। क्योंकि इस विश्व में 6 द्रव्य है तो प्रत्येक द्रव्य कितना बड़ा छोटा है इसका ज्ञान भी तो आवश्यक है ना, इसलिए ये सब प्राथमिक ही यहाँ जानकारी दे रहे हैं। अभी 31 पढ़ने के पहले सेकंड लाइन में करेक्शन है, वो लल लक्षण है ना, वो तल लक्षण चाहिए, तत् लक्षण पहला अक्षर, सेकंड लाइन पहला अक्षर, तो ल के बदले तो तल लक्षण पढ़ेंगे किया क्या सब नहीं क्या हुआ तो करना उसको पढ़ेंगे, उसमें एक लाइन करके साइड में लिखना, भवतु विवक्षितमेतद् ननु यावन्तो निरंश देशांशा तल्लक्षणयोगादपि अणुवद्रव्याणि सन्तु तावन्ति। ऊपर में विवक्षितम एतत् नन तो एतत् वो दो का न हो गया, फिर अर्थ देखेंगे। शंकाकार कहता है यह आपकी विवक्षा रहो, अर्थात आप जो द्रव्य में निरंश अंशों की कल्पना करते हो, निरंश अंशों का अर्थ समझते हैं, अविभाग अंशों की यानी स्मॉलेस्ट यूनिट की कल्पना करते हो, जिसका दूसरा और छोटा भाग नहीं हो सकता वो निरंश है, परंतु है तो वो अंश, एक यूनिट बनाए, निरंश अंश यानी स्मॉलेस्ट यूनिट। तो आप जो द्रव्य में किसकी चौड़ाई की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, निरंश अंश क्या हुआ तो एक प्रदेश, जो कल्पना करते हो वह करो, परंतु जितने भी निरंश देशांश है उन्हीं को एक एक द्रव्य समझो। अभी क्या कह रहे हैं, वो जो एक एक उसका टुकड़ा हुआ ना, वो मानता है टुकड़ा हुआ, तो उसको एक एक द्रव्य समझो कहते हैं। यानी जीव में असंख्यात प्रदेश है, तो असंख्यात में एक एक प्रदेश वाला एक एक आत्मा है, ऐसा समझो ये कह रहे हैं। हाँ, यानी वो एक एक प्रदेश वाला एक एक द्रव्य है, ऐसा समझो। जिस प्रकार परमाणु एक द्रव्य है, उसी प्रकार एक द्रव्य में जितने निरंश देशांशों की कल्पना की जाती है उनको उतने ही द्रव्य समझना चाहिए, न कि एक द्रव्य मानकर उसके अंश समझो। यानी जैसे कोई स्कंद है ना, हम ये कहते हैं ये पेंसिल ये स्कंद है, ये पट्टी ये स्कंद है, ये जो ये प्लास्टिक है वो ये स्कंद है, तो स्कंद है परंतु इसमें द्रव्य, तो हम कहेंगे एक एक परमाणु सिंगल सिंगल द्रव्य। तो कहते जब जीव असंख्यात प्रदेश कह रहे हो तो उसका एक एक प्रदेश एक एक जीव समझो, ये कहना चाहता है। द्रव्य का लक्षण प्रत्येक अंशों में जाता ही है। अब कहते द्रव्य का जो, क्योंकि गुण तो पूरे ही द्रव्य के सभी असंख्यात प्रदेशों में फैला, एक एक गुण सभी अनंत गुण, तो प्रत्येक एक एक प्रदेश में सभी गुण भी तो पाए जाते हैं, तो कहते उसको एक एक द्रव्य समझ लो। भावार्थ, गुण समुदाय ही द्रव्य कहलाता है, ये शंकाकार का शंका का भावार्थ बता रहे, यानी शंकाकार क्या पूछना चाहता है वो जरा स्पष्ट करके बता रहे हमको, समाधान तो बाद में आएगा उसका। गुण समुदाय ही द्रव्य कहलाता है, यानी गुणों का समूह को हम द्रव्य कहेंगे। यह द्रव्य का लक्षण द्रव्य के प्रत्येक देशांशों में मौजूद है, क्योंकि प्रत्येक प्रदेश में प्रत्येक गुण तो मौजूद ही है, तो प्रत्येक, क्योंकि गुण तो द्रव्य के संपूर्ण भागों में है, तो उसके सभी असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान गुण है ना, तो एक एक प्रदेश में ज्ञान भी है, दर्शन भी है, वो सभी उसमें है। इसलिए शंकाकार की शंका है, इसलिए जितने भी देशांश है उतने ही उन्हें द्रव्य समझना चाहिए। असंख्यात प्रदेश ही कहते हो तो वहां असंख्यात जीव है ऐसा मानो, ये उसका कहना है। अब इसको समाधान करके रूल आउट करेंगे। 32 नंबर, नैवम यतो विशेष परमस्यात् पारिणामिकोऽध्यक्ष खण्डैकदेश वस्तुनि अखण्डितानेकदेशे च। उक्त शंका ठीक नहीं है, न एवं यत, अभी उसका कारण बता रहे, क्योंकि खंड स्वरूप एक देश वस्तु मानने से और अखंड स्वरूप अनेक देश वस्तु मानने से गुण परिणमन में बड़ा भारी भेद पड़ता है, यह बात प्रत्यक्ष है। एक भावार्थ कहते हैं, यदि शंकाकार के कहने के अनुसार देशांशों को ही द्रव्य माना जावे तो द्रव्य एक देश वाला खंड खंड रूप होगा। हमने तो अखंड द्रव्य ऐसा बताया था, अखंड रूप अनेक प्रदेशी नहीं ठहरेगा। खंड रूप एक प्रदेशी मानने में क्या दोष आता है सो आगे लिखा जाता है। पहले में पहले वो खंड रूप मानेंगे, कहते वही अखंड मान लो ना एक एक प्रदेशी, तो उसके लिए आगे भी बताएंगे उसको। 33
प्रथमोद्देशित पक्षे यह परिणामो गुणात्मकस्तस्य एकत्र तत्र देशे भवितुं शीलो न सर्वदेशेषु।
पहला पक्ष स्वीकार करने से कहा था ना कि निरंश देश एक एक द्रव्य समझो, तो पहला पक्ष स्वीकार करने से अर्थात खंड रूप एक प्रदेशी द्रव्य मानने से उसका जो गुणों का परिणमन होगा वह संपूर्ण वस्तु में न होकर उसके एक ही देशांशों में होगा, क्योंकि देशांशी वस्तु हो गई ना, तो वो उसका परिणमन भी एक एक प्रदेश में अलग अलग होगा हर एक, क्योंकि असंख्यात जीव कहे तो असंख्यात के असंख्यात अलग अलग अपने अपने परिणमन अलग होगा, यानी असंख्यात प्रदेशों में कौन सा ज्ञान क्या जान रहा है, कौन सा क्या जान रहा है, कौन सा क्या जान रहा है, एक जीव नहीं होगा, वो सभी अलग अलग जीव हो जाएगी। क्योंकि ब्रैकेट में शंकाकार एक देशांश रूप भी वस्तु को समझता है, इसलिए उसके कथनानुसार गुणों का परिणमन एक देश में ही होगा। चौतीस नंबर, तदसत् प्रमाण बाधित पक्षत्वादक्ष संविदुपलब्धे देहैक देश विषय स्पर्शादिह सर्वदेशेषु। गुणों का परिणमन एक देश में होता है यह बात प्रत्यक्ष बाधित है, क्योंकि हमने जीव द्रव्य कहा उसके असंख्यात प्रदेश का, अभी असंख्यात प्रदेश में वो अलग अलग गुण समुदाय रूप मान लेते हैं, और उसमें अगर एक देश में उसका परिणमन होता है, जीव तो है असंख्यात प्रदेश ही और एक प्रदेश में ही जानने का कार्य होता है ऐसा मानेंगे तो ये बात प्रत्यक्ष बाधित है, ये ऐसा हम देखने में तो नहीं आता है। जिसमें प्रमाण बाधा आवे वह पक्ष किसी प्रकार ठीक नहीं हो सकता। इंद्रिय जन्य ज्ञान से यह बात सिद्ध है कि शरीर के एक देश में स्पर्श होने से संपूर्ण देशों में रोमांच हो जाता। एक देश है एक पार्क, भावार्थ शरीर प्रमाण आत्मद्रव्य है, इसलिए शरीर के एक देश में स्पर्श होने से संपूर्ण में रोमांच होते हैं, अथवा शरीर के एक देश में चोट लगने से संपूर्ण में वेदना होती है। यदि शंकाकार के कथनानुसार आत्मा का एक एक अंश यानी प्रदेश ही एक एक आत्मद्रव्य समझा जाए तो एक देश में चोट लगने से सब में पीड़ा नहीं होनी चाहिए, जिस देश में कष्ट पहुंचा है उसी देश में पीड़ा होनी चाहिए, परंतु होता इसके सर्वथा प्रतिकूल है, अर्थात संपूर्ण शरीर में एक आत्मा होने से संपूर्ण में ही वेदना होती है, इसलिए खंड रूप एक देश स्वरूप वस्तु नहीं है किंतु अखंड स्वरूप अनेक प्रदेशी है। अभी अनेक प्रदेशी तो आकाश अगर ये काल को छोड़कर बाकी जिसको जिसको हमने कायत्व स्वीकार किया है ये सारे अनेक प्रदेशी द्रव्य है।
वेदना का माने अगर वो इंजेक्शन देते हैं तो उतना भाग छोटा हो जाता है, तो वेदना की बात नहीं है, आपको कहीं काट है जुबा,
हाँ
शरीर उधर ही होती है, उधर ही होती है ऐसा
पार्ट पार्ट है
ज्ञान, मतलब मुझे तो वेदना
की बात कर रहे हैं, वेदना किसका अनुभव कर रहे हैं ना,
उंगली को लगा, उंगली को आप काटा लगा,
हाँ।
तो पूरा पैर क्यों उठाया?
नहीं नहीं उठाया तो पैर है, उंगली थी लेकिन जरा स्पष्टीकरण करने मैंने इसमें जो लगा है उतने मैं शंका नहीं करता हूँ, आशंका करता हूँ
ये वहाँ लग गया, ये पूरे आत्मा में ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ लगा तो वहाँ लगा, पर वहाँ लगा है तो केवल यहीं पर जानना हुआ कि पूरे में जानना, तो पूरा जानना एक गुण की एक पर्याय है ना, तो जितना बड़ा ज्ञान गुण है उतनी ज्ञान की पर्याय भी होगी, तो अमुक भाग में लगा है ऐसा पूरे ज्ञान ने जान लिया, ये तो
जानने की अपेक्षा
ज्ञान गुण तो उसका ज्ञान गुण का परिणाम तो सर्वत्र है ना उसका
वेदना माने ज्ञान देते
वो पीड़ा का अनुभव उसका वेदना का
आप क्या करते वेदना
का पीड़ा जो अपने को मिली यहाँ लगा यहाँ पीड़ा हो अगर यहाँ पीड़ा होती है हमारे वो तो अगर सभी बातों में पता लगता है तो वहां मैं इंजेक्शन लगा दूं तो मेरे को पीड़ा बंद हो जाएगी
तो वहां पीड़ा होती है ऐसा पूरे ज्ञान नहीं जाने जाता
हम तो कहेंगे इंजेक्शन से वेदना बंद होती यही बात मेरे हम
नहीं मैंने इसलिए मैं स्पष्ट करने को कह रहा हूँ कि जो लौकिक अपनी मान्यता है लौकिक मान्यताओं के साथ यहाँ ऐसा सुंदर हो
वेदना का अर्थ अनुभव लेना दुख का मत लेना
अब यही रुकना पड़ेगा ना
वेदना
जो वेदना होती है वो ज्ञान गुण का परिणाम है
अनुभव कहो वेदना कहो वेदन कहो
तो जिसमें वेदना से दर्द होता है ऐसा कोई गुण ही नहीं है
दर्द हुआ नहीं क्या हुआ
दर्द का ज्ञान हुआ जीव को
नहीं क्या हुआ
हाँ तो वो ज्ञान हुआ पर दर्द
हुआ नहीं क्या हुआ
अच्छा नहीं लगा
देखो जैसे जलता है तो कुछ जलन हो गई या काटने पर ऐसी काटने जैसी पीड़ा हुई ये पीड़ा भी अलग अलग टाइप की होती है ना काटा तो चुभने जैसा पीड़ा होगी वहाँ तो मेडिकल भाषा में बोलने तो वो टच के स्पर्श के जो है टच सेंसेशन के या तो वो प्रेशर या तो जो कुछ इतना फील हो जाता है
उसमें
ज्ञान ही है ना वो तो हाँ तो ये मैं हूँ ये ऐसा हो जाता है तो द्वेष हो जाता है चलो हम रुकेंगे जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकारो सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ